एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudaventicast.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudaventicast.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सपना जिसे समझ रहा तू अपना, ये दुनिया है एक सपना जिसे समझ रहा तू अपना। कोई साथ नहीं जाए सपना जिसे समझ रहा तू अपना। छोड़ के जब जाएगा एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना, कोई साथ नहीं जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना, ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। सपना, जिसे समझ रहा तू अपना, कोई साथ नहीं जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा, जिसे कहता है तू अपना, ये दुनिया है एक सपना, जिसे समझ रहा तू अपना। सपना, जिसे समझ रहा तू अपना, कोई साथ नहीं जाएगा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, उन्हें तो आत्मिक आशीष दे और तेरे नजदीक आने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला और मदद कर कि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारों, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है राजमार्गों और बाड़ों में जाओ। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है। यह एक दृष्टांत हम पाते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से और लोगों से सुनाया। यह दृष्टांत हम लूका 14 अध्याय का 1-24 पदों में पाते हैं। उद्धारकर्ता यीशु एक फरीसी के भोज में अतिथि था। उसने अमीरों के साथ साथ गरीबों से भी निमंत्रण स्वीकार किए और अपने रिवाज के अनुसार उसने अपने सामने के दृश्य को सत्य के अपने पाठों से जोड़ा। यहूदियों के बीच पवित्र पर्व उनके राष्ट्रीय और धार्मिक आनंद के सभी मौसमों से जुड़ा हुआ था। यह उनके लिए अनंत जीवन के आशीर्वाद का एक प्रकार था। वह महान भोज जिस पर उन्हें अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठना था, जबकि अन्य जाति बाहर खड़े थे और लालसा भरी आंखों से देख रहे थे, वह एक ऐसा विषय था जिस पर वे विचार करने में प्रसन्न थे। चेतावनी और निर्देश का वह पाठ जो मसीह देना चाहता था, उसने अब एक महान भोज के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया। वर्तमान और भविष्य के जीवन के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद यहूदियों ने अपने आप के लिए ही बंद करके रखने के बारे में सोचा। उन्होंने अन्य जातियों को परमेश्वर की दया से वंचित किया। दृष्टांत के द्वारा मसीह ने दिखाया कि वे स्वयं उस समय दया के निमंत्रण, परमेश्वर के राज के आह्वान को अस्वीकार कर रहे थे। उसने दिखाया कि जिस निमंत्रण को उन्होंने तुच्छ जाना था, वह उन लोगों को भेजा जाना था जिन्हें वे तुच्छ समझते थे, जिनसे उन्होंने अपने वस्त्र इस प्रकार छीन लिए थे मानो वे कोढ़ी हो और उनसे दूर रहना चाहिए। अपने भोज के लिए मेहमानों को चुनते समय फरीसी ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखा था। मसीह ने उससे कहा, जब तू कोई भोज या रात का खाना बनाए तो अपने मित्रों, भाइयों, कुटुंबियों या धनी पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे बुलाए और तुझे बदला दिया जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तू धन्य हो जाएगा, क्योंकि वे तुझे बदला नहीं दे सकते, क्योंकि तुझे धर्मी लोगों के जी उठने पर बदला में प्रतिफल दिया जाएगा। मसीह यहाँ मूसा के माध्यम से इज़राइल को दिए गए निर्देश को दोहरा रहे थे। उनके पवित्र पर्वों पर प्रभु ने निर्देश दिया था कि परदेशी, अनाथ और विधवाएं जो तेरे फाटकों के भीतर हो, आकर खाएं और तृप्त हो। यह हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 14:29 में। ये सभाएं इज़राइल के लिए एक उदाहरण थी। इस प्रकार सच्चे अतिथ्य का आनंद सिखाया गया। लोगों को पूरे वर्ष शोक संतप्त और गरीबों की देखभाल करनी थी और ये पर्व से एक व्यापक शिक्षा मिली। इज़राइल को दी गई आध्यात्मिक आशीषें केवल उनके लिए ही नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें जीवन की रोटी दी थी ताकि वे इसे दुनिया को दे सकें। यह काम उन्होंने पूरा नहीं किया था। मसीह के शब्द उनके स्वार्थ के लिए एक फटकार थे। फरीसियों को उनके शब्द अप्रिय लगे। फरीसी लोग यहूदियों में धर्म अगुए थे और वे अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे और वे सोचते थे कि वही लोग हैं जो धर्म का शिक्षा दूसरों को दे सकते हैं और दूसरे से अच्छे हैं। बातचीत को दूसरे चैनल पर ले जाने की उम्मीद में उनमें से एक ने पवित्र भाव से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। यह व्यक्ति बहुत आश्वस्त होकर बोल रहा था मानो उसे राज में जगह मिल गई हो। उसका रवैया उन लोगों के रवैये के समान था जो मसीह द्वारा बचाए जाने पर खुश होते हैं जब वे उद्धार के वादे की शर्तों का पालन नहीं करते हैं। उसकी भावना बिलाम की तरह थी, बिलाम भविष्यवक्ता की तरह थी, जब उसने प्रार्थना की, मुझे धर्मी की मृत्यु मरने दो और मेरा अंत उसके जैसा हो। गिनती 23:10 में मिलता है। फरीसी स्वर्ग के लिए अपनी योग्यता के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि स्वर्ग में जो कुछ भी वह भोगना चाहता था उसके बारे में सोच रहा था। उसकी टिप्पणी दावत में आए मेहमानों के दिमाग को उनके व्यवहारिक कर्तव्य के विषय से हटाने के लिए थी। उसने उन्हें वर्तमान जीवन से परे धर्मी के पुनर्स्थान के सुदूर समय में ले जाने के बारे में सोचा। मसीह ने ढोंगी की हृदय को पढ़ लिया और उस पर अपनी नजरें गड़ाकर उसने लोगों के सामने उनके वर्तमान विशेष अधिकारों के चरित्र और मूल्य को खोल दिया। उसने उन्हें दिखाया कि भविष्य की धन्यता में हिस्सा लेने के लिए उन्हें उसी समय कार्य करना था। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा भोज तैयार किया और बहुतों को बुलाया। जब भोज का समय आया तो मेजबान ने अपने नौकर को अपेक्षित मेहमानों के पास दूसरा संदेश लेकर भेजा, आओ क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन एक अजीब उदासीनता दिखाई गई। सभी एकमत होकर बहाने बनाने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है और मुझे इसे देखने जाना चाहिए। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैंने ब्याह कर लिया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। इसमें से कोई भी बहाना किसी वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं था। जिस व्यक्ति को अपनी जमीन का टुकड़ा देखने के लिए जरूर जाना चाहिए, उसने पहले ही उसे खरीद लिया था। उसे देखने जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि उसकी दिलचस्पी अपनी खरीदारी में ही थी। बैल भी खरीदे जा चुके थे, उन्हें परखना सिर्फ खरीदार की दिलचस्पी को संतुष्ट करने के लिए था। तीसरे बहाने में कोई तर्क नहीं था। यह तथ्य कि जिस मेहमान को बुलाया गया था उसने शादी कर ली थी, उसे दावत में आने से नहीं रोकना चाहिए था। उनकी पत्नी का भी स्वागत किया जाता, लेकिन उसके पास मौज मस्ती के लिए अपनी योजनाएं थी और ये उसे उस दावत से ज्यादा वांछनीय लगी जिसका उसने वादा किया था। उसने मेजबान की संगति के अलावा दूसरे लोगों की संगति में आनंद लेना सीख लिया था। उसने माफी नहीं मांगी, अपने इनकार में शिष्टाचार का दिखावा भी नहीं किया। मैं नहीं आ सकता सिर्फ सच्चाई के लिए एक पर्दा था, मुझे आने की परवाह नहीं है, यह वह कह रहा था। इसका इस तरह का मतलब होता है, सभी बहाने एक व्यस्त मन को दर्शाते हैं। इन भावी मेहमानों के लिए अन्य हित सर्वव्यापी हो गए थे। जिस निमंत्रण को स्वीकार करने का उन्होंने वचन लिया था उसे एक तरफ रख दिया गया और उदार मित्र को उनकी उदासीनता से अपमानित होना पड़ा। महान भोज के द्वारा मसीह सुसमाचार के माध्यम से दी जाने वाली आशीषों का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रावधान स्वयं मसीह से कम नहीं है। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है और उससे उधार की धाराएं बहती है। प्रभु के दूतों ने यहूदियों को उद्धारकर्ता के आगमन की घोषणा की थी। उन्होंने मसीह को परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है के रूप में इंगित किया था। हम यह पढ़ते हैं यूहन्ना 1:29 में, अपने द्वारा प्रदान की गई दावत में परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार भेंट की, एक ऐसा उपहार जिसकी गणना नहीं की जा सकती। परमेश्वर के प्रेम ने महंगी दावत का प्रबंध किया था और अक्षय संसाधन उपलब्ध कराए थे। मसीह ने कहा, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, यूहन्ना 6:51। लेकिन सुसमाचार भोज के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए उन्हें अपने संसारिक हितों को मसीह और उनकी धार्मिकता को प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के अधीन करना था। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ दिया और वह उसे कहता है कि वह उसकी सेवा को हर संसारिक और स्वार्थी विचार से ऊपर रखे। वह विभाजित हृदय को स्वीकार नहीं कर सकता। संसारिक स्नेह में डूबा हुआ हृदय परमेश्वर को नहीं दिया जा सकता। यह सबक हमेशा के लिए है। हमें परमेश्वर के मेमने का अनुसरण करना है, चाहे वह कहीं भी जाए। हमें उसके मार्गदर्शन को चुनना है। संसारिक मित्रों की संगति से ज्यादा उसकी संगति को महत्व देना है। मसीह कहते हैं, जो पिता या माता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 10:37। मसीह के दिनों में कई लोग अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी रोजाना की रोटी तोड़ते समय ये शब्द दोहराते थे, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। लेकिन मसीह ने दिखाया कि अनंत लागत पर मिलने वाली मेज के लिए मेहमानों को ढूंढना कितना मुश्किल था। जो लोग उसके शब्दों को सुनते थे वे जानते थे कि उन्होंने दया के निमंत्रण को तुच्छ समझा था। उनके लिए संसारिक संपत्ति, धन और सुख सुविधाएं महत्वहीन थी, सर्व अवशोषित। एकमत होकर उन्होंने बहाना बनाया था। अब ऐसा ही है, दावत के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए दिए गए बहाने सुसमाचार के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए बहाने के पूरे आधार को शामिल करते हैं। लोग घोषणा करते हैं कि वे सुसमाचार के दावों पर ध्यान देकर अपनी संसारिक संभावनाओं को खतरे में नहीं डाल सकते। वे अपने संसारिक हितों को अनंत काल की चीजों से ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। उन्हें परमेश्वर से जो आशीर्वाद मिले हैं उनकी आत्माओं को उनके निर्माता और उद्धारकर्ता से अलग करने में बाधा बन जाते हैं। वे अपनी संसारिक गतिविधियों में बाधा नहीं बनना चाहते और वे दया के दूत से कहते हैं, अभी के लिए जाओ, जब मुझे सुविधाजनक समय मिलेगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। प्रेरितों के काम 24:25। अन्य लोग उन कठिनाइयों का आग्रह करते हैं जो उनके सामाजिक संबंधों में उत्पन्न होंगी यदि वे परमेश्वर के आह्वान का पालन करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने रिश्तेदारों और परिचितों के साथ सामंजस्य से बाहर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस प्रकार वे खुद को दृष्टांत में वर्णित अभिनेता साबित करते हैं। दावत का स्वामी उनके तुच्छ बहानों को अपने निमंत्रण के प्रति अपमान मानता है। जिस व्यक्ति ने कहा, मैंने एक पत्नी से विवाह किया है और इसलिए मैं नहीं आ सकता, वह एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पत्नियों या अपने पतियों को परमेश्वर के आह्वान पर ध्यान देने से रोकने देते हैं। पति कहता है, जब मेरी पत्नी इसका विरोध करती है तो मैं अपने कर्तव्य के प्रति अपने विश्वास का पालन नहीं कर सकता, उसका प्रभाव मेरे लिए ऐसा करना बहुत कठिन बना देगा। पत्नी अनुग्रहपूर्ण आह्वान सुनती है, आओ, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। और वह कहती है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करें, मेरे पति दया के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि उनका व्यवसाय रास्ते में आ रहा है, मुझे अपने पति के साथ जाना है और इसलिए मैं नहीं आ सकती। बच्चों के दिल प्रभावित होते हैं, वे आना चाहते हैं लेकिन वे अपने पिता और माता से प्यार करते हैं, और चूंकि वे सुसमाचार के आह्वान पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए बच्चे सोचते हैं कि उनसे आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वे भी कहते हैं, मुझे माफ कर दो। ये सभी उद्धारकर्ता के आह्वान को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें परिवार के दायरे में विभाजन का डर है। वे मानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करके वे घर की शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। जो लोग स्वार्थ बोते हैं वे स्वार्थ ही काटेंगे। मसीह के प्रेम को अस्वीकार करके वे उस चीज को अस्वीकार करते हैं जो अकेले ही मानवीय प्रेम को पवित्रता और दृढ़ता प्रदान कर सकती है। वे न केवल स्वर्ग खो देंगे बल्कि उस चीज का सच्चा आनंद लेने से भी चूक जाएंगे जिसके लिए स्वर्ग बलिदान किया गया था। मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज आपका क्या उत्तर है? ये लोग को निमंत्रण दिया गया था लेकिन ये लोग बहुत सारे बहाना लगाए। आज आपके पास भी परमेश्वर का निमंत्रण आता है, सुसमाचार का न्योता आता है कि आइए और उस भोज में भाग लीजिए। उस भोज को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है और खुद यीशु मसीह जीवन का रोटी है। जो उसे पाता है वह जीवन पाता है और अनंत जीवन पाता है। आज आपके पास यह निमंत्रण जा रहा है। क्या आप यीशु मसीह के भोज में आना चाहेंगे? क्या आप यीशु मसीह को जो जीवन का रोटी है खाना चाहेंगे? यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे आप जीवन अनंत जीवन पाएंगे। आज यह बुलावा आता है, आइए हम इस निमंत्रण को समझे और स्वीकार करें और परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तेरी उपासना करते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं मेरे हरेक सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, तूने हमें तेरा वचन दिया, तूने हमें निमंत्रण दिया है कि हम तेरे भोज में आए। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जीवन का रोटी है, उसे अपनाए और अनंत जीवन पाए। तो हमें तेरा पवित्र आत्मा दे और तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में हमारे जीवन में काम कर ताकि हम तुझे ग्रहण करें और तेरे राज्य में प्रवेश हो सके। हम सबों को आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaveentist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।